नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी सी दोस्त प्रीति शर्मा आज आपको अपने साथ हुए एक नए कांड की गाथा सुनाऊंगी। ये पहली बार हुआ कि मुझे बिना मोड के एक से नहीं बल्कि दो लोगों से चुदवाना पड़ा। तो सुनिए मेरी दर्द भरी दास्तान। तो हुआ ये कि मेरे पति ने एक दिन मुझसे सलाह की कि वैसे भी तो तुम घर में खाली बैठती हो, तो क्यों ना तुम बिजनेस करो, मुझे भी काम करना अच्छा लगता था। और मैंने झट से हामी भर दी। तो मेरे लिए मेरे पति दीपक ने छोटी सी कपड़े बनाने की फैक्ट्री शुरू की और उसका सर्वे सर्वा मुझे बनाया। यानी करीब 40 लोग थे जो मेरे अंडर काम करते थे और वो लोग रेडीमेड कपड़े बनाते थे, साथ में उन कपड़ों को एक्सपोर्ट करने का भी काम था। तो इससे पहले मैं अपने पति से बिजनेस की बातें सुनती थी मगर मुझे खुद बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस था नहीं। पति ने काम शुरू करके दे तो दिया, मैं जाकर फैक्ट्री बैठने लगी। धीरे धीरे हर कागज़ को ध्यान से पढ़ती, कोई दिक्कत आती तो फ़ोन पर हस्बैंड से पूछती। अक्सर मेरे पति भी आते और मेरी हेल्प करते। उनके एक दोस्त भी थे जो बिजनेस में मेरे पति के भी पार्टनर थे और इस नए बिजनेस में मेरे पार्टनर थे। वो पार्टनर इसलिए थे क्योंकि उनके पास ही एक्सपोर्ट का लाइसेंस था, हमारा माल उन्हीं के जरिए विदेशों में जाता था। रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन तो वो मेरे पास आते ही थे। हम दोनों अक्सर बैठकर बिजनेस की और इधर उधर की बातें करते थे। देखने में वो अच्छे थे मगर मैं उन्हें हमेशा भाई साहब कहकर ही बुलाती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो मुझे किसी और नज़र से देखते हैं। मगर जब खूबसूरत जवान और फुल सेक्सी औरत आपके सामने बैठी हो तो मर्द तो घूरता ही है। और वैसे भी यार मैं कौन सा दूध की धुली हूँ, 36 लोगों से जुदवा चुकी। तब आपको तो पता ही है कि दीपक की 5 इंच की लुल्ली से मेरी तो तसल्ली होती नहीं। मुझे तो 8-9 इंच का मस्त मोटा लंड और मर्द चाहिए जो कम से कम आधा घंटा तो मुझे पेले। मैं तो हमेशा इसी तलाश में रहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा दिखने वाला मर्द मिले और मैं उसके साथ अपनी काम वासना को शांत करूँ। अब राजेश भाई साहब मेरे नज़दीक आने लगे तो धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती बढ़ी। फिर एक साथ लंच, डिनर, बियर से होते हुए विस्की के 2 पैग तक पहुंच गई हमारी दोस्ती। मैं 2-3 पैग तो आराम से पी लेती हूँ मगर उसके बाद बैठ जाती हूँ। फिर मुझे पता नहीं चलता कि मैं अनाप शनाप क्या बकवास करने लगती हूँ। इसलिए मैं नहीं पीती कि कहीं दारू के नशे में कुछ ऐसा चूतियापन ना कर दूँ जो बाद में मेरे लिए मुसीबत बने। मगर अब राजेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम कितनी बार बाहर खाने पर जा चुके थे मगर उन्होंने कभी मुझे गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक बड़े ही जिम्मेदार दोस्त हैं वो मेरे, मैं भी उन पर बहुत विश्वास करने लगी। हमारा काम भी धीरे धीरे चला। फिर मेरे पति को भी मुझ पर बहुत ट्रस्ट है। तो एक बार ना मेरे पति को कुछ दिन के लिए अब्रॉड जाना था। जिस दिन वो गए उसी दिन शाम को राजेश का फोन आया। कहते, हेलो प्रीति। हेलो राजेश जी, क्या हाल चाल? अरे मैं एकदम बढ़िया, बस एक काम था तुमसे। हाँ कही। मुझे ये था कि शाम को ड्रिंक या कोई प्रोग्राम होगा या किसी से मिलना होगा। तो वो बोले, मेरा एक्सपोर्ट का लाइसेंस ख़त्म हो रहा है तो उसके लिए हमारे एक मंत्री जी हैं मुरलीधरन, उनसे आज शाम की अपॉइंटमेंट ली है। वैसे तो दोस्त है, मैं खुद ही चला जाता लेकिन सोचा अब हम साथ में काम कर रहे हैं तो तुम भी चलो, तुम भी अपना सोशल सर्कल बनाओ, बड़े बड़े लोगों से मिलो, कल हो सकता है तुम खुद का अपना लाइसेंस बनवा लो और हमारी कंपनी को और भी फायदा हो। तो मैंने कहा, अरे मैं उनसे मिलके क्या करूँगी, आप कह रहे हो आप दोस्त हैं तो आप ही मिल लो। मगर जब उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप बता दीजिए कब चलना है। शाम को 8 बजे मैरियट होटल में मिलने का प्रोग्राम था। करीब 7:30 बजे मैं बिल्कुल तैयार हो गई, अपनी सबसे फेवरेट पिंक शिफॉन साड़ी पहनी, मेकअप किया। जब राजेश जी आए तो मुझे देखकर बोले, क्या बात है जनाब, आज तो एक्सपोर्ट विभाग ही लेने का प्रोग्राम है। 20 मिनट क्या ट्रैवल करके हम होटल पहुंचे। वहां बार में जाकर हम एक कोने में सोफे पे बैठ गए और टाइम पास के लिए बीर मंगवा ली। 10 मिनट बाद मंत्री जी आए। मंत्री या भैंसा कुछ भी कह लो, काला रंग, घुंघराले बाल, मोटी सी मूंछ, कोला मटोला, 90-95 किलो का तो होगा। वो आया और साथ में 2-4 चमचे थे मगर उन सबको तो पीछे रोक दिया। हम तीनों बैठकर बातें करने लगे। मंत्री जी के लिए बियर आ गई मगर मंत्री जी का ध्यान तो मेरी तरफ था। अब देखो मेरा ब्लाउज भी थोड़ा लो कट था तो क्लीवेज तो दिखेगा, और वो साला ठरकी मंत्री बार बार मेरी क्लीवेज को ही घूर रहा था। मुझे बड़ा अटपटा लगा, मगर मेरी मजबूरी थी, मेरी जरूरत थी। हालांकि मैंने कहा भी नहीं था, मगर मंत्री जी ने खुद ही कह दिया कि अगर आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए तो हम बनवा देंगे, आपका भी। राजेश जी भी उस मंत्री की मंशा को भांप गए, मगर कुछ बोले नहीं। मंत्री जी हमारे पास 10 मिनट ही रुके, एक ग्लास बियर एक पीस चिकन खाकर राजेश को अगले दिन मिलने का बोलकर चले गए। उसके बाद हम भी खाना खाकर अपने घर आए। अगले दिन राजेश जी उस मंत्री से मिलने फिर गए, मगर इस मिलने मिलाने में 20 दिन निकल गए। ना तो राजेश का ही लाइसेंस बना और ना ही मेरा। इस दौरान मेरे पति भी विदेश से आ गए, उन्होंने भी अपने लिंक से बड़ी कोशिश की, मगर एक्सपोर्ट लाइसेंस बन ही नहीं रहा था। फिर एक दिन राजेश और मैं दोनों मंत्री के घर गए। वहाँ भी हमने बियर पी, मंत्री तो इधर उधर की बेवजह बातें करता रहा, कभी अपने पीए को डांट देता, कभी किसी आईएएस ऑफिसर को फोन लगाकर उसकी क्लास लगाता, मतलब कि बेवजह का रौब दिखा रहा था मगर काम की बात नहीं कर रहा था। हाँ, नजरें मेरी बदन पर बराबर फिसल रही थी मगर मंशा जाहिर नहीं कर रहा था। मगर साफ बात ये थी कि काला भैंसा तो मुझे फूटी आंख नहीं भाता, उससे किसी भी किस्म की ऐसी वैसी बात का तो सवाल ही नहीं था। काफी देर बैठकर हम उस खटिया से मंत्री की बकवास सुनकर वापस आ गए। रास्ते में मैंने कहा, राजेश जी मुझे लगता है ये साउथ इंडियन मंत्री हरामी है, चाहता कुछ और है मगर बोल नहीं रहा। राजेश जी बोले, अरे बके तो सही साला, कितने पैसे चाहिए क्या चाहिए मैं सब कर दूंगा, मगर हमारा काम कर दे। काम तो होना नहीं था, ना हुआ। तो उनका एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो हमें किसी और बंदे से लाइसेंस पर सामान बाहर भेजना पड़ा, मगर वो सामान कस्टम में अटक गया और पता नहीं क्यों वहाँ से सामान आ गया। अब क्योंकि सामान मेरे पति ने अपने नाम से भेजा था तो उनको कस्टम में जाना पड़ा और कस्टम अधिकारी ने उनको कस्टडी में ले लिया कि आप तो गलत सामान भेजते हो, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए। रात तक जब दीपक नहीं आया ना तो मैंने राजेश को फ़ोन किया, उन्होंने पता किया तो पता चला दीपक को तो गिरफ्तार कर लिया। भाई मैं तो घबरा गई, मैं गाड़ी उठाकर झट से राजेश जी के घर पहुंची। रो रो कर पागल हो गई, मेरी वजह से मेरे पति को जेल की हवा खानी पड़ गई। राजेश ने मुझे हौसला दिया और दीपक से मिलकर हम वापस घर आए। अगले दिन राजेश जी ने अपने वकील से बात की और वकील ने दीपक के केस पे सुनवाई की। उस दिन मुझे मंत्री जी का फोन आया और दीपक की गिरफ्तारी पर बड़ा अफसोस जताया। पता नहीं क्यों मेरे मन में विचार कौन था कि हो ना हो, ये सब इस मंत्री ने अपनी मां चलवाई है, इसको कैसे पता चला दीपक को कस्टम ने गिरफ्तार किया। मैं समझ गई क्या चाहता है, मैंने मंत्री से बोला, सर आप कुछ करो, अब तो मेरा सहारा बस आप हो। तो बोले, अरे मैडम हम तो जनता का सेवक, आपका भी सेवक, मैं देखता क्या हो सकता, जो भी होता मैं आपको बताता, आप चिंता मत करो मैं हूँ, कहके फोन काट दिया। 2:30 बजे उसका फिर फोन आया और उन्होंने मुझे होटल मैरीलैंड में सबसे जरूरी कागजात लेकर आने को कहा। शाम को करीब 7 बजे मैं नहाकर बाथरूम से निकली और ऐसे ही नंगे अपने कमरे में आई। अपने कमरे में लगे आदमकद शीशे में अपने नंगे बदन को देखने लगी, दराज खोली, वीट निकाली, बगल के बाल झाड़ को अच्छे से साफ किया, फिर सारे बदन को मॉइस्चराइजर से मालिश की, फिर अपनी सेक्सी लॉन्जरी निकाल कर पहनी, ऊपर से बढ़िया सी साड़ी पहनी, बैकलेस ब्लाउज, सारे बदन को बढ़िया इम्पोर्टेड परफ्यूम से महका कर घर से निकली। आज मैं कोई शरीफ औरत या किसी ऊंचे खानदान की इज्जत और औरत बनकर नहीं, एक रंडी बनकर जा रही थी। मन में सोच लिया था, अगर मंत्री खुद नहीं बोला तो मैं खुद ही ऑफर करूंगी, मगर मुझे अपने पति को जेल से बाहर निकालना है। होटल पहुंची तो सामने उनका पीए मिला, उन्होंने बताया मंत्री जी 7th फ्लोर पर 704 में है। लिफ्ट से 704 की बेल बजाई, एक आदमी ने दरवाजा खोला, अच्छा बढ़िया सूट पहना था, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। कहा, मंत्री जी प्रीति आ जाओ, मंत्री जी अंदर ही। मैं उसके पीछे अंदर गई, पहले एक ड्राइंग रूम था फिर बेडरूम आया। बेड के सामने लगे सोफे पर मंत्री जी अपनी चकाचक धोती कुर्ता पहने बैठे थे, मुझे देखकर तो खिल गए। अरे प्रीति आओ आओ, आपका इंतजार था। शराब की महफिल पूरे शबाब पर थी, मुझसे पूछे बिना पैक बनाकर मेरे सामने रखा, सबने ग्लास को चीयर्स किया तो मैंने भी कर दिया। फिर थोड़ी देर की फॉर्मेलिटी और बाकी लोगों से जान पहचान के बाद मंत्री जी बोले, अभी मैंने आपके पति का केस देखा, आपका काम हो जाएगा, आप चाहो तो आपके पति आज रात आपके साथ होंगे। कहने के बाद वो रुक गया, मेरी आंखों में देखने लगा, मेरे से जैसे किसी जवाब या ऑफर का वेट कर रहा हो। मैंने कहा मंत्री जी, मैं भी आज यही सोच कर आई हूँ, मुझे ये काम करवाना है, घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी, कि मैं जो आप चाहो मुझे मंजूर है। तो हंस पड़ा, गंदी सी घिनौनी सी हंसी, जर्दा खा के दांत काले कर लिए, मोटे मोटे भद्दे होंठ। आप बहुत समझदार हैं, आप अपने बिजनेस में तरक्की करोगे एक दिन। मैंने बड़ी दिलेरी से बोला, बताइए मुझे क्या करना है। ये बात सुनकर तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तो सूट वाला मिस्टर अय्यर बोला, आपको क्या लगता है मैडम, हम लोगों के पास पैसे की कमी है, पोजीशन की कमी है, पावर की कमी है, तो हमें क्या चाहिए होगा। मैं चुप रही, सिर्फ उनके बेशरम होने का वेट कर रही थी। बोला, हम सिर्फ प्यार का भूखा, घर पे काली सी बीवी, हम इधर नॉर्थ की गोरी गोरी चमड़ी वाली औरतें देखता तो मन में बड़ी खलबली होता। तीनों हरामी बड़ी गंदी सी नजर से मुझे देखकर हंसे। तो आपको क्या कमी है, आप तो विदेश जाकर कितनी मर्जी गोरी चमड़ी को भोग सकते हो। तो गोरी विदेशी, हमको तो देसी माल पसंद ना। देसी? हाँ देसी, अपने देश का, जो हमारी बात समझे, इमोशन समझे। मैंने कहा, तो फिर दिल्ली में किस चीज की कमी, पैसा फेंको माल उठाओ। ये बात सुनकर अय्यर बोला, अरे नहीं वो नहीं, पैसे वाला नहीं, हमको तो सीधा साधा घरेलू औरत आपके जैसा। अब वो लाइन पर आ गए। मैंने सोचा अब सादा मामला खींचने का फायदा नहीं है, मैंने कहा ठीक है, आपको मेरी जैसी चाहिए, मैं नहीं। अरे आप तो बहुत समझदार हैं, तो पहले मेरा काम करो फिर मैं आपका काम कर दूंगी। अय्यर ने जेब से फोन निकाला, नंबर मिलाया, बोला अरे सुनो, वो जो कस्टम वाला केस है ना, उसका पेपर वर्क हमने चेक किया, सब ठीक है, मैं ऑर्डर बनवा कर भेज दूँ, तुम उसको सुबह छोड़ दो। सुबह नहीं, अभी। अरे अभी छोड़ देंगे तो वो घर जाएगा, और घर पे नहीं मिलेगी तो परेशान होगा, सुबह आप भी जाना, वो भी जाएगा। मैंने एक पैग और बनाया, गटागट पी कर दिलेरी बढ़ गई। मैंने कहा तो बताओ मैं क्या करूँ आप लोगों के लिए। तो बोले, सबसे पहले तो इस खूबसूरत जिस्म की नुमाइश करो। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, अगला भाग लेके जल्दी आती हूँ मैं।